रावण चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हो यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय प्रभुपद शिल प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद
जय विष्णुपाद परमहंस प्रजगाचार्य स्तोत्र श्रद्धिस डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ग्लोरीज टू गुरु ग्रंथ। ग्लोरीज टू शिव प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। बोर्ड पर श्लोक है स्कंद एक अध्याय पांच और श्लोक संख्या 11।
तत्वाग्विसर्गो जनताग् विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकं बद्वति अपि नामान्यदस्य यशो किंकृतानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा तत्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकं बद्धव्यत्पि नामान्यतस्य यशो किंकृतानीय श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा।
बोलिए।
तत्वाग्विसर्गो सर्गो जनताघ विप्लवो गायन्ति गृह्णन्ति साधवा जनताघ विप्लवो श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। माताजीस तत्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो सर्गो जनवाग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अभवद्भवि नामानन्तस्य शुभलोकयात् श्रवन्ति गायन्ति।
शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। तत् उस वाक वाणी विसर्ग सृष्टि जनता जन सामान्य अघ पाप विप्लव क्रांतिकारी यस्मिन् जिसमें प्रतिश्लोकम प्रत्येक श्लोक अवबद्धवती अनियमित रूप से रचा गया अपि होते हुए भी नामानि दिव्य नाम आदि अनंतस्य असीम भगवान के यश महिमा अंकितानि चित्रित यत जो श्रवन्ति सुनते हैं गायन्ति गाते हैं गृणन्ति स्वीकार करते हैं साधवा शुद्ध मनुष्य को निष्ठावान है। शुद्ध मनुष्य जो निष्ठावान है। शब्दार्थ तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा का वर्णन से पूर्ण है वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत हैं। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा गया हो ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य शिला उपा जी बताते हैं महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा जाता है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार कर ले अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले और अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हरेक पर लागू होती हैं। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमागान में व्यस्त रहता है क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। तो प्रभुपाद जी का प्रपट हमें काफी तरह का संदेश देता है। इसमें प्रपट काफी लंबा है। इसमें विशेषकर प्रभुपाद जी ने कुछ विशेष बिंदुओं पर एग्जांपल्स को कोट करते हुए चीजें समझाई हैं। एक तो प्रभुपाद जी कहते हैं अज्ञानतावश या लोभ के वश भारत और चाइना में भी युद्ध हुआ था 1965 में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे पहले तो दोनों देश या उससे पहले का जब समय था तो सब इकट्ठे बड़े खुशहाल ढंग से रहा करते थे। तब गॉड कॉन्शियसनेस वाज इन सेंटर। तो अब क्या हो गया? अब ऐसे भूभाग के लिए लड़ रहे हैं जहां पर कुछ उगता नहीं है, खाली बर्फ है, ना आपको आना इधर ना मुझे आना, बट फिर भी उस थोड़ी सी जमीन के लिए। अभी भी बीच में कुछ समय पहले डोकलाम नाम का सुना होगा आपने, कुछ हुआ था ऐसा। उनकी सेनाएं जो हैं ऐसी जगह पर आ गई थी जिसकी वजह से भारत का लगभग 2 महीने तक झगड़ा चलता रहा उनके साथ। रोज अखबारों में आता था आज तो युद्ध छिड़ा छिड़ा, बस आज तो जो है अटैक हुआ हुआ। आए दिन अखबारों में न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स पर यह दिखाया जाता था कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है और उनकी स्ट्रेंथ कितनी, हमारे पास कितने लड़ाकू विमान है और उनके पास कितने लड़ाकू विमान है, हमारे पास कितने बॉम्ब्स हैं उनके पास कितने बॉम्ब्स, उनके पास कितने परमाणु बम है और हमारे पास कितने हैं, अगर हमारा युद्ध होता है तो हम कितने दिन जीवित रहेंगे, ये कितने दिन का हमारे पास सामान है। ये कर करके लोगों को पागल कर दिया, आधा भारत पागल हो गया। कि लड़ाई होने वाली, लड़ाई होने वाली, किसी भी बात पर, छोटी सी बात पर झगड़ा हो सकता है देशों के बीच में। क्या कारण है? लोभ है। क्या कारण है? अपना आधिपत्य जमा करना चाहते, जमाना चाहते हैं। ऐसे इनके थोड़े से और आगे चले, एक देश और है, नॉर्थ कोरिया। उधर भी एक राजा बैठा है, किम जोंग करके नाम उनका। उन्होंने अपने परिवार वालों को सबको मरवा दिया। उनकी सेना, उनके लेक्चर में अगर कोई सोता हुआ मिल गया तो अगले दिन उसको टांग देते थे। तो ध्यान रखना कम से कम इस लेक्चर में तो नहीं सोना कितनी बार दिखाया गया कि भैया ये जो सोता हुआ जनरल कर्नल थे, बड़े बड़े पोस्ट पर थे, बस उनके लेक्चर में झपकी मारते नजर आ गए और अगले दिन वो नहीं रहे, उनकी समाधि बना दी गई या उनका बड़ा बड़ा प्रोसेशन निकाला गया। जी ऐसी स्थिति। और किनसे युद्ध होने का खतरा है? एक अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, उधर भी नए प्रधानमंत्री आए हैं, वो भी वहां से कुछ बात करते हैं, ये इधर से कुछ बात करते हैं, कहते हमें भी कम मत समझना, कहते आप हमारे सामने चींटी के समान हो, कहते हमारे पास भी बॉम्ब है, कहते हमारे पास भी बॉम्ब है, कहते मेरे पास परमाणु बॉम्ब है, वो कहते मेरे पास तो टेबल पे लगा, अभी बटन दबाऊंगा तो तुम खत्म। रोज लग रहा था आज खत्म और कल खत्म। ईगो क्लैश से एक छोटा सा देश हमें आग कैसे दिखा सकता है? और अब सोचिए प्रभुपाद जी इसलिए आगे चलकर बताते कि नेताओं को समझाना बहुत जरूरी है। हमारी बागडोर ऐसे नेताओं के हाथ में है जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, अहंकार से युक्त हैं और घोड़ों के लगाम इनको दे रखी है। हम क्या करते हैं? वोट देकर आते हैं, सर वोट लीजिए, और ये चला रहे हैं हमको। छोटी सी ईगो क्लैश के चक्कर में कभी भी युद्ध करा देंगे। हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा गिरेगी, ऊपर से कृपा आएगी, कृपा गिरेगी, छप्पड़ फाड़ के गिरेगी, ऊपर से बम गिरेगा, धुफ खत्म। तो इसलिए बहुत जरूरी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि नेताओं को प्रचार करना। अब नेताओं को प्रचार करना ये तो बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब समझते हैं आप? टेढ़ी खीर कैसे टेढ़ी हो सकती है? एक बार किसी व्यक्ति को खीर दावत पे बुलाया गया, वो नहीं गया, वो नेत्रहीन था, तो उसको आके बताया क्या टेस्टी खीर थी, बहुत मजा आ गया आज तो खाने में। कहते कैसी थी? तो उसने अपनी छड़ी पकड़ा दी, उसको छड़ी ऐसी होती ना, कहते ये ऐसी थी। कहते अच्छा, बड़ी टेढ़ी खीर थी, शुक्र है मैं नहीं गया खाने के लिए, तो गले में अटक जाती। तो नेताओं को प्रचार करना टेढ़ी खीर के समान है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो आजकल के नेता लोग जो है, कैसे नेता बनते हैं? एक परीक्षित महाराज का जीवन चरित्र हमारे सामने आता है, युधिष्ठिर महाराज का आता है, जो धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, और भाई भी उनके थे, जो भाई ने बोल दिया, बड़े भाई ने बोल दिया, वो धर्म है, उसको मानना है। एक एक व्यक्ति पांचों पांडवों में ऐसा था कि 100 के 100 कौरवों को मार सकता था, लेकिन धर्म की वजह से नहीं। हमने वचन दिया है, हमने उनको कहा है कि हम इतने साल बाहर रहेंगे, हमने ये किया, बस वैसी बातों को मानते थे, भाई की बात की अवहेलना नहीं करते थे। लेकिन आजकल के नेता कैसे नेता बनते हैं, जो जानकारी हम लोगों को है, उसमें होता है क्या है कि अगर आप उनके प्रचार कार्य में मदद करते हो, वहां पर जाके पहले कारपेट दरिया बिछाते हो, उनके लिए चाय लेकर आते हो, पानी पिलाते हो, हवा करते हो, जहां भी उनकी रैली है वहां पर सबसे आगे खड़े होकर जिंदाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाते हो, तो बार बार वो आपको देखता है, बार बार बोलते कि ठीक है हमारा ये काम कर देना, हमारा वो कर देना, आगे पीछे घूमते हो, फिर वो कहते सर अगली बार का जो काउंसिलर का टिकट है, म्यूनिसिपल काउंसिलर, उसका मुझे टिकट दिलाई ना सर। कहते ठीक है ले लो टिकट, इसको दिला देते। पूछा नहीं कौन था, कहां से आया था, कितने क्रिमिनल उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कितना पढ़ा लिखा है, अंगूठा लगाता है, पेन पकड़ता है, हाथ में कुछ नहीं मालूम, बस इसलिए दे दिया क्योंकि दरी बिछाता था। और उससे ऊंचे जो नेता हैं, उससे और एमएलए वगैरह कैसे बनते हैं? बहुत भारी मात्रा में डोनेशन दी जाती है कि सर इतना करोड़ मैं देता हूं, तब जाके मुझे एक टिकट चाहिए। अब आप सोचिए जो व्यक्ति पैसा देकर या इस तरह से चीजें कर आया है और नेता बना है समाज का, उससे क्या आशा करते हैं? जब उसको पोस्ट मिलेगी तो क्या करेगा? समाज के लिए कार्य करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसको तो उसने जितना लगाया उसका 10 times ज्यादा चाहिए, 5 साल का ड्यूरेशन है उसके पास, उसमें सब कुछ निचोड़ना चाहता, सब कुछ निकालना चाहता। लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी हमको इंसिस्ट कर रहे हैं स्पेशली कि जाइए इन नेताओं के पास, जाइए इनको भी समझाइए। लेकिन ये नेताओं का तो उद्देश्य कुछ और है, तो फिर कैसे शांति आएगी विश्व में? हर देश प्रभुपाद जी कितना मजाक उड़ाते थे यूनाइटेड नेशंस का कि जो हमने यूएनओ बनाया है कि ये शांति लाएगा विश्व में. कहते ऐसे कैसे हो सकता है, बिना ट्रेनिंग के, बिना एजुकेशन के, बिना स्पिरिचुअल नॉलेज के आप विश्व में शांति ला ही नहीं सकते. ये तो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आप बहुत से जानवरों को, कुत्तों को एक कमरे में बंद कर दो और उनसे शांति की अपेक्षा करो कि यहां से अभी जो है ओम शांति 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 के श्लोक के उच्चारण की आवाज आएगी, नहीं आएगी. वो भोंकेंगे, काटेंगे एक दूसरे को. उसी प्रकार संसार में जिस प्रकार के आज नेता हैं, ये सभी नेता इसी प्रकार की योग्यता से भरपूर हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं. वो हमारे हमारे संसार को, हमारे देश को चला रहे हैं. ये तो विधाता का एक चमत्कार हुआ कि अभी जो देश के नेता हैं उनको गीता का ज्ञान है. उन्हें मालूम है कि भगवत गीता से अच्छी चीज कोई है नहीं. एक राजा दूसरे देश में जाकर बोलता है मेरे पे इससे अच्छी चीज नहीं है देने के लिए. अच्छा, लेने वालों को तो शायद उससे भी अच्छी चीज मिल सकती है. कितने नहीं, लेने वालों को भी इससे अच्छी नहीं मिलेगी. तो इसको इस राजा को जानकारी है गीता की. तो जब हम बात करते हैं कि देश के नेताओं को प्रचार करना है, नहीं तो ये क्या करेंगे, एक ना एक दिन लुटिया डुबा देंगे. और फिर प्रभुपाद जी आगे और चीज बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए जब हम देखते हैं कि समाज में जब नेताओं के पास जाते हैं या जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो लोगों का जीवन का लक्ष्य देशभक्ति तक निपट जाता है. सबसे पहले वो अपने संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, मैं और मेरा मेरा परिवार. जब उससे संतुष्ट नहीं रह पाते तो उससे आगे प्रयास करना चाहते हैं, फिर देश की समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं. लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं रहते क्योंकि कहीं ना कहीं देश में कोई भी घटना, अप्रिय घटना सुनाई देगी तो उनका दिल दुखेगा, उनका दर्द होगी, उनकी समस्या आएगी. इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कृष्ण भावनामृत एक ऐसा रेमेडी है संसार को संतुष्ट करने का, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से सब कुछ हरा भरा हो जाता है, सबको संतुष्टि मिल जाती है. मुख में भोजन डालने से पूरे शरीर को एनर्जी मिल जाती है. उसी प्रकार अगर हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं. लेकिन दिल्ली दूर है, अभी इतना आसान नहीं है. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी अपने जीवन से यह भी कर दिखा रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति ठान ले समाज में बदलाव लाने की तो बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. आज बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल दिए जाते हैं और क्या बताया जाता है कि 70 वर्ष की आयु में एक वृद्ध व्यक्ति, अभी 60 के बाद रिटायर होने के बाद व्यक्ति कहीं सेट होना चाहता है, अपना चारपाई पकड़ लेता, दवाइयां ये सब इसी में रहता है उसका जीवन. लेकिन 70 वर्ष की आयु में एक वृद्ध व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा से विदेश में की धरती पर चरण रखता है, वहां पर पैर रखता है और प्रार्थना क्या करते हैं कि यहां के लोग तो तमोगुण और रजोगुण से भरे हुए हैं, ये भगवत ज्ञान कैसे सीखेंगे, इन्हें मैं कैसे समझा पाऊंगा. लेकिन फिर आप ही की शायद कोई योजना है, आप मुझे क्योंकि यहां पर लाए हैं तो आप कुछ कराना चाहते हैं, तो मुझे मेरी वाणी में ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं इनके अंदर बदलाव ला सकूं. और फिर एक 70 वर्ष का व्यक्ति युवाओं के बीच में प्रचार करते और युवाओं के बीच में प्रचार करते हुए ऐसे लोग जो हर प्रकार के नियमों को तोड़ने वाले थे, मतलब जहां पर अधर्म जागृत था पूरी अवस्था में, कलयुग जागृत अवस्था में बैठा है जहां पर, वहां पर ऐसे लोगों के मध्य में जाकर कृष्णा कीर्तन करना और भागवत का प्रचार करना. तो ये जो वाणी यहां पर लिखी है श्रीमद् भागवतम में, क्रांति विप्लवा, क्रांतिकारी विचार, क्रांतिकारी योजना. श्रीमती मोरारजी ने कहा कि आप वहां जाना क्यों चाहते हो, इस उम्र में, मेरे पिता की उम्र है आपकी, आउट ऑफ कंपैशन बोल रही थी कि इस उम्र में आप जा रहे हो, क्योंकि ज्यादातर भारत से तो जो लोग उधर जाते हैं तो वो उधर के रह जाते हैं, उधर के ही हो जाते हैं, या कोई और प्रयोजन होता है सेंस एंजॉयमेंट का. तो श्रीमती मोरारजी को लगा ये साधु तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इस उम्र में अगर वहां जाएंगे तो सर्दी से ठिठुर के मर जाएंगे. मुझे कोई बड़ी बात नहीं देने में एक शिप में टिकट, लेकिन आप मत जाइए. वो कहते नहीं, पूरी दृढ़ता के साथ बोला मैं जाना चाहता हूं, मेरे गुरु की आज्ञा है. और फिर कमाल देखिए, क्रांतिकारी विचार, अपने गुरु जो क्रांतिकारी थे, लॉयन सिंह, लॉयन गुरु बोलते थे उनको, सिंह गुरु, उनके विचार भी बड़े क्रांतिकारी थे. पूरे परिवार ही ऐसा था, पिताजी भी ऐसे थे, 100 ग्रंथ लिख दिए
100 से ज्यादा भजनों की रचना कर दी, और ये तब की जब वो गृहस्थ थे, 8-10 बच्चे थे, 13 बच्चे थे, उसके साथ साथ कोर्ट में मजिस्ट्रेट थे, कितनी सारी पोस्ट, कभी टीचर बने, कभी कुछ बने, कभी मजिस्ट्रेट बने, कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जगन्नाथपुरी में भी कार्य किया। तो क्रांति लेकर आए, इतने सारे अपसंप्रदायों को खत्म किया। चैतन्य महाप्रभु आए, सुंदर प्रचार किया, प्रति घरे घरे गया, मांगो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा। कौन थे इनके आगे के प्रचारक? नित्यानंद जी, हरिदास ठाकुर, और ये सब प्रचारक थे। बताइए, इन लोगों ने प्रचार किया पूरे भारतवर्ष में। लेकिन उनके जाते ही षड गोस्वामी वृंद ने वृंदावन इत्यादि की खोज करी, सारे ग्रंथों की रचना करी, और कुछ समय बाद ही अपसंप्रदाय शुरू हो गए, नए नए मंत्र निकालने लगे, भज निताई गौर राधे श्याम, बोलो हरे कृष्ण हरे राम, एक में ही सब कुछ है, ऑल इन वन। लगता भी कन्विंसिंग लगता है भाई, गौर निताई जी भी आ गए, राधा कृष्ण भी आ गए, हरे कृष्ण हरे राम भी आ गए, 16-16 शब्द बोलने की जरूरत क्या है, शॉर्टकट कर लेते ना। और आप कभी जाएंगे उन जगन्नाथपुरी ऐसी जगहों पर जहां पर स्वयं हरिदास ठाकुर जी को समाधि दी महाप्रभु ने, उधर भी यही भजन गाया जाता है, उधर भी यही मंत्र चलता सुबह शाम। मुझे तो लगता है हरिदास ठाकुर छोड़ के ना चले गए समाधि को भी। जो हरिनाम मैंने लिया, 16 शब्दों का मंत्र जो महाप्रभु ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, 300,000 नाम लेने का रिकॉर्ड मैंने बनाया, महाप्रभु ने डिग्री मुझे दी नामाचार्य, इतनी केयर की महाप्रभु ने उनकी। अब कहते मेरे से जप नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं लग, कहते हैं तो आप छोड़ दो ना, अब तो वृद्ध हो चुके हो, अब तो आप नाम आचार्य हो, कोई दिक्कत नहीं है, 300,000 नाम। कहते नहीं, फिर भी तभी कुछ खाऊंगा जब पूरा नाम हो जाएगा। नाम आचार्य की उपाधि दी उनको ही, जहां समाधि दी उधर ही ये चल रहा है क्या, भज गौर निताई गौर राधे श्याम, और बोलो हरे कृष्ण हरे राम, कितना टॉर्चरिंग है उनके लिए वहां पर, एक साधु के लिए, एक वैष्णव के लिए, और सुबह शाम चल रहा है। तो इतने सारे अपसंप्रदाय आ गए, और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन सब का जो है खंडन किया, फिर से जो है धर्म की स्थापना करी। कितनी बार, हर 200 साल बाद, 300 साल बाद सब ऊपर नीचे हो जाता है, लीलाएं समाप्त हो गई, फिर से इसको जागृत करी, फिर जब आचार्य लोग गए उसके बाद इतना अधर्म फैल गया कि फिर समस्याएं शुरू हो गई। ऐसी अद्वैताचार्य ने जब आह्वान किया महाप्रभु का, तब भी यही स्थिति चल रही थी, अब सब कुछ स्टैब्लिश कर लिया, फिर वही स्थिति चल रही है, और अब हमारे पास दूसरी स्थिति है, अजीबोगरीब स्थिति। माया का ऐसा अटैक, ऐसा भारी आक्रमण हुआ, सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में अटैक हुआ इस बात का, और वहां पर जो है लोग फ्री विल के द्वारा जीने लगे, फ्रीडम चाहिए, हम जैसे जीना चाहें वैसे जीना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्रता पे सेंध ना लगाएं, और बड़े बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन बनने लगे, लोग ओपन हो गए, और इतने ओपन हो गए कि आज हर प्रकार के, जहां भी हम लोग, जैसे कल हिज ग्रेस गौरांग प्रभु इतने सारे स्टेटिस्टिक बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे वहां से लिए गए पहले, कि ये लोग क्या करते थे, कितनी भारी मात्रा में होते थे, विवाह नाम की चीजें बंद हो गई वहां पर। अब हम लोग एग्जाम्पल दे करते थे, 7 डे सेशन में प्रभु जी का सुना था एक बार, कि एक महिला ने 14 शादियां करी, लेकिन उसका जो 13 नंबर जो हस्बैंड था वो वही था जो सेकंड नंबर पर था, वो रिपीट हो गया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ी, एक 21 साल की 23 साल की लड़की ने शादी कर ली एक 62 साल के वृद्ध व्यक्ति से, और एक दिन 3 महीने बाद अलमीरा खोली अपने हस्बैंड की, तो उसमें एल्बम निकला, शादी का एल्बम, उनकी शादी का नहीं था, पुरानी शादियों का था, उसमें देखा, अरे रिश्ते में तो ये मेरे सगे दादा लगते हैं। ओ कृष्णा, उस लड़की के सगे दादा लगते थे वो, उसके बाद भी उनको छोड़ना नहीं चाहती, अब कहती अब तो हो गई। ऐसी जगहों पे पूरा कर्मठता के साथ 7 फेरों का वो वादा निभाते कि मेरे दादा है तो क्या दिक्कत है, वैसे ज्यादा दिन साथ नहीं रहते लोग, ये है कलयुग। विवाह नाम, वहां पर विवाह जो है अपने आप में एक विभूति रह जाएगी कि विवाह किया है। हम यहां पर कई बार प्रोग्राम से बुलाते हैं डिवोटीज की, प्रभु जी आइए हमारे यहां प्रोग्राम कीजिए, क्या है जी 25th एनिवर्सरी है, हम जाते हैं करते 50th एनिवर्सरी है मनाते जाएंगे, एक बार 75 भी करके आया मैं, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, वहां पे वीक्स में होता है, वीक्स में कितने वीक्स की शादी है और कौन सी वाली है पता नहीं चलता, ये बच्चे मेरे हैं किसके, पहली से थे, दूसरी थे, तीसरी थे, संभाल रहे, और 18 के बाद तो कानूनन जाओ जहां मर्जी जाओ। तो पाश्चात्य संस्कृति सबसे पहले खतरा वहां पर आया, क्रिश्चियनिज्म में अटैक हुआ, क्रिश्चियनिटी, लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया, प्रभुपाद ने चर्च खरीद लिया, कहते हमें दे दो ना, हम यहां पर कृष्णा मंदिर खोलेंगे, खोलो ही ताले। तो वहां से फिर ये कल्चर हिंदुइज्म, जो सोकॉल्ड भारत की वैदिक संस्कृति की, इस तरफ भी अटैक मारा इन्होंने। प्रभुपाद जी आगे इस प्रपट में बोल रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, भारत ने अपने संस्कारों को ठीक से पालन नहीं किया, अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज को ढंग से पालन नहीं किया, इसलिए संसार में ये सारी की सारी समस्याएं चल रही। पहले चाइना और भारत दोस्त थे, आखिर अटैक क्यों किया, क्योंकि वहां पर भी क्या आ गया, कम्युनिज्म आ गया, और कम्युनिज्म फैला कैसे, प्रभा जी कहते हैं लिटरेचर से, ये सारी की सारी चीजें लिटरेचर से फैली, लोगों ने भर भर के लिटरेचर पहुंचे। क्रिश्चियनिटी कैसे फैली, फ्री में बाइबल्स घरों में भर दी, लोगों ने पढ़ी और हो गया काम। कम्युनिस्ट कैसे बने, हर जगह लिटरेचर भेज दिया। तो प्रभा जी कहते थे इसलिए जो मैं पुस्तकें लिख रहा हूं, जिनके परपट्स लिख रहा हूं, इनको घर घर तक पहुंचा दीजिए, लिटरेचर से क्रांति आएगी अगर ये लिटरेचर हर घर में पहुंच गया। इसलिए हमारे इस मूवमेंट में प्रभुपाद जी ने कितनी स्टेटमेंट्स दी हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उनके डिसाइपल्स ने इसको लाइफ एंड सोल बना लिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब ये लिटरेचर हर घर में पहुंच जाएगा ना, कोई किसी भी जाति का, किसी भी कलर का, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, कन्फ्यूजन तो हर एक के अंदर है, दुखी तो हर कोई व्यक्ति है, समस्याएं हर एक के अंदर, अनर्थों से तो हर कोई जूझ रहा है, प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं है, चाहे किसी भी धर्म में हो। लेकिन यहां पर हमारे ग्रंथों में आप जिस तरह का मर्जी प्रश्न पूछ लीजिए, हर प्रकार का उत्तर दिया गया है। इतने क्वेश्चन किए हैं अर्जुन ने किए हैं, परीक्षित महाराज ने किए हैं, शौनक आदि ऋषि कर रहे हैं, हर तरह के प्रश्नों का उत्तर है इसके अंदर, हम सोच भी नहीं सकते, हमने पूछे भी नहीं होंगे, हमारे दिमाग में भी नहीं आया होगा, जब पढ़ते हैं तो पता चलता, हाँ ये भी तो है, ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो आंसर है। तो सारे के सारे आंसर हमें वहां पे मिलते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी फोर्स करते थे कि इसको बांटो, इसको दो, तब आएगा क्रांति। और ये क्रांति लाने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उन्होंने एम्पावर किया अपने नीचे पार्षदों को ताकि क्रांति आ सके। अदरवाइज भारत ने तो, जैसे हमने बताया कि जिस प्रकार डिग्रेडेशन हुआ यहां पर संस्कृति का, कल्चर का, जन्म सार्थक करी कर परोपकार लक्ष्य था हमारा, जो भी भारत में जन्म है। एक लेक्चर में राधे श्याम कह रहे कि हर देश की क्वालिटी होती है प्रोड्यूसर, यहां पे ये प्रोड्यूस होता है, यहां पर कपड़ा ज्यादा अच्छा होता है, यहां दूध ज्यादा अच्छा होता है, यहां पर तेल ज्यादा निकलता है ना, अलग अलग देशों के बारे में बता रहे। और भारत में क्या था, भारत में थी हमारी वैदिक संस्कृति, इसमें हमारी मजबूत पकड़ थी, इसको हमें दूसरों को फैलाकर पहुंचाना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, ये रह गया, हमसे छूट गया ये। यहां से हमने वैदिक संस्कृति को प्रचार करना था, लेकिन क्या बोला जाता था, क्या हमारा देश किस लिए पूरे विश्व में फेमस हो गया, कि इंडिया इज द फैक्ट्री ऑफ स्वयंभू भगवान, एवरीडे देयर इज सो मेनी भगवान इज प्रकट, है ना, प्रोड्यूसिंग देयर सो मेनी भगवान, स्वयंभू अपना भी बनते, थोड़ा सा योगा सीखा, प्राणायाम सीखा, उधर जाके भगवान बन जाते हैं। एक लेक्चर दिया, दो लेक्चर दिया, कंप्यूटराइज ऑरा बनाया, हाथ से ओम लिखते हुए ठीक करा, अगले दिन वो भगवान। और ऐसे भगवान फिर अपनी लीला में, भाई भगवान श्री कृष्ण की भी लीला थी, वो भी जेल में प्रकट हुए थे। तो कई बार जब ये जेल जाते हैं, कहते हैं ये भी लीला चल रही है, भगवान शुरू में गए थे, हम बाद में जा रहे हैं, अंतर सिर्फ इतना है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और जो आज हम कलह कलेश समस्या देखते हैं समाज में, वो केवल इसलिए है कि हमारे वैदिक धर्म का पालन करने वालों ने इसको छोड़कर सेंस एंजॉयमेंट को धर्म बना लिया। अभी मेरी कुछ मुस्लिम प्रचारकों से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, जो कि आजकल उनका पूरा इंस्टीट्यूट है, वो सब कुछ सिखाते हैं, कुरान भी पढ़ाते हैं, वेद भी पढ़ाते हैं, और उसके द्वारा वो हमारे ही लोगों को प्रचार करते हैं। और हमारे लोग वो सब, क्योंकि कुछ सुना ही नहीं है, कभी सीखा नहीं है, अब धर्म रही नहीं, तो वो सब इजिली कन्विंस हो जाते हैं कई बार, ऐसे भी देखे। तो बातचीत चली तो फिर पता चला, हमने कहा भैया कहीं कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है, सब बराबर ही है। कहते हाँ सर बराबर है, वेद में भी लिखा है भगवान निराकार है, हम भी बताते भगवान निराकार है। मैं कहा बिल्कुल है, मैं कहा हमारे तो आगे एक स्टेप और बताते हैं, क्या ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द, थोड़ा डिटेल है आगे। आप कहते हैं कि अल्लाह देखता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम भी यही बोलते हैं कि जिसे हम अल्लाह बोलते हैं उसे हम भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं। थोड़ा डिटेल ज्यादा है कि देखता कैसे है, सुनता कैसे है, हर जगह व्याप्त कैसे है। भगवान कहते हैं अर्जुन हृदय से दृष्टि, मैं हर एक हृदय में उपस्थित हूं और वहां से सब कुछ करता हूं। नहीं नहीं, हमारे यहां का जो व्यक्ति कुरान की आयतों से नहीं जीता वो दोजख जाता है, जहन्नुम जाता है, और जो पालन करता है वो कहां जाता है, जन्नत जाता है। हाँ बिल्कुल जाता है, हम भी यही बोलते हैं, स्वर्ग जाता है, नरक जाता है। थोड़ा डिटेल है, वहां अमरावती नाम की जगह है, वहां पर इंद्र जो है राजा है, उनकी वाइफ का नाम शची है, और वहां पर कनक कानन नाम के गार्डन है, सोमरस है, परिजात वृक्ष है, जिनको तुम अप्सराएं बोलते हो, हुरे बोलते हो, 72 हुरे, वहां नाम दिए हैं उनके, क्या क्या नाम है हर ब्रह्मचारी को पता है अप्सरा है, क्या उनसी रंबा है, उर्वशी है, पूर्वचिति है, और मेनका है, इन सब के नाम है, है वहां पर, थोड़े डिटेल है। आप कहते हो कि वहां पर आग के दरिए हैं जहन्नुम में, हम कहते हैं थोड़ा और डिटेल में आओ, 5th कैंटो खोल लो, 28-26 चैप्टर में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, कहां कहां कौन कौन से पाप करने वाला जाएगा, सब लिखा है, डिटेल है। तो इस प्रकार बातचीत चली, हमने कहा है सब कुछ बराबर, लेकिन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, लेकिन लिखा है कि ना तत् प्रतिमा अस्ति, उनकी प्रतिमा नहीं है, उनका रंग नहीं है, उनकी फोटो नहीं है। मैं कहा यस, इस संसार में ना तो कोई ऐसा रंग है जो भगवान को कंपेयर कर सके, ना कोई ऐसा पत्थर है जो भगवान की तरह बन सके, ना कुछ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का तो दिव्य शरीर है, इस संसार से मिलता जुलता है ही नहीं कुछ, इस संसार के मटीरियल रंग कैसे भगवान को रंग दे सकते। कहते हाँ, तो कहीं ना कहीं जाकर हाँ माने, और फाइनली कहते हैं जो आप जिनको अवतार बोलते हैं हम उनको नबी बोलते हैं, नबी रिप्रेजेंटेटिव्स थे। आखिरी में यहां थोड़ा सा कहते नहीं नहीं, हम उनको अवतार, कृष्ण को हम अवतार मानते हैं, राम को हम अवतार मानते हैं, जैसे हमारे नबी आए तुम्हारे बिना अल्लाह एक है। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने श्लोक कर दिया, वो वाला मानुष्य तनु आश्रिता। मैं कह लो अभी तो आपने श्लोक कोट किया, भगवान कहते रहे मूर्ख लोग मुझे ढंग से नहीं समझ पाएंगे, वो श्लोक कोट करके उसी के श्लोक को बार बार कोट कोट करके मैंने फिर हर जगह पर्सनलिज्म डाल दिया, क्योंकि उसके मुंह से गलती से श्लोक निकलाया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वो उनके पास जो लिटरेचर है वो भी चलो ऊपर से उतरा है, वेद भी ऊपर से उतरे हैं, वेदों को जीवन में कैसे जीना था, भगवान कब कब अवतरित हुए, क्या क्या लीलाएं करी, वो पुराणों में दिया गया है। अब इतना भरो, इतना हमारे पास ज्ञान भरा हुआ है यहां पर, क्रांति नहीं आएगी क्या लोगों? प्रभात जी कह रहे हैं जो सिंफुल हैं, जो संसार में जिन लोगों को जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, जो अपना लक्ष्य भूल चुके हैं, और सेंस एंजॉयमेंट जिनका जीवन का लक्ष्य बन चुका है। अब जब सेंस एंजॉयमेंट जीवन का लक्ष्य बन जाता है ना, तो फिर दूसरी चीजें खत्म हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। उनसे हमने बात करी, मैंने कहा आपकी हिंदुओं से लड़ाई नहीं है और हिंदुओं की मुसलमानों से लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है अपने आप से, अपने अनर्थों से। तो कहीं ना कहीं इन बातों से उनको लगा हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं प्रभु जी, आप ठीक कह रहे हैं, दोबारा मीटिंग रखेंगे, दोबारा अच्छा लग रहा है आपसे सुनकर। तो इस समय क्रांति की जरूरत है, विप्लव। क्यों बोला क्रांति? क्योंकि इससे पहले भी बड़ी क्रांति हुई है, 1857 क्रांति, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक क्रांति। अब जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सेंस एंजॉयमेंट बढ़ गया, अननेसेसरी नीड्स डेवलप करी गई, डिजायर डेवलप की, ऐसी आइटम्स बनाई गई जिसकी जरूरत नहीं है, और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट बनाए गए, मैनेजमेंट कोर्सेज डाले गए ताकि उसको फिलअप कर सके, और उसके बाद बेरोजगार और रोजगार का झगड़ा चलता रहा। हमारे आश्रमों में भी भगवान की कृपा से सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की फिलॉसफी को अपनाते हुए हमारे भक्त लोग प्रचार करते हैं, जीवन भी वैसे व्यतीत करते हैं। हम देखते हैं कि जिन चीजों के लिए लोग सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मंदिर में रहने वाले भक्तों को बहुत आसानी से उपलब्ध सारी चीजें, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप आता है। सोने के लिए भी है, खाने के लिए भी है, ट्रेवलिंग के लिए भी है, प्रचार करने के लिए भी है, मान भी है, सम्मान भी है। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा जॉब है संसार में, कौन सी ऐसी पोस्ट है जो आपको सर्वसम्मति से हर जगह जो आपको आदर दिलाती हो। आप एक इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, चार लड़के अंडर में, वो सैल्यूट मारेंगे बस खत्म, और नीचे गार्ड मारेगा पांच लोग। आप एमबीए हैं, 15 लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग मारेंगे। सुपरवाइजर हैं तो लाइनमैन मारेगा। मैनेजर हैं, नीचे के मारेंगे, ऊपर का नहीं मारेगा। कंपनी के मालिक हैं तो एक कंपनी का मारेंगे, साथ वाला सैल्यूट नहीं मारेगा पड़ोस का, साथ वाली लेबर भी उसको सैल्यूट नहीं मारेगा क्योंकि मेरी कंपनी का मालिक थोड़ी है। पॉलिटिशियन है, हाँ जी, कौन सी पार्टी के हैं? अच्छा, इस पार्टी, सो एंड सो पार्टी के हैं। तो उस पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिकल कंपनी के ही लोग जो है, पार्टी के लोग सैल्यूट मारेंगे, वो भी सारे नहीं मारेंगे, उसको खींच कर ऊपर लाना चाहेंगे, तो एक पार्टी। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप देख सकते हैं क्या हालत चल रही है आजकल। आसानी से कोई नहीं जी सकता, कोई सैल्यूट नहीं मारेगा जब, और पूरे विश्व का तो कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री, है कि नहीं? और अगर आप भक्त हैं, साधारण सिंपल से भक्त हैं, क्या करते हैं? सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं आप, और क्या करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के? भगवान का और गुरु का गुणगान करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, महामंत्र का जप करते हैं। कब करते हैं? रोज करते हैं। कितना करते हैं? 16 करते हैं, 16 से अधिक भी करते हैं। ओके, उसके बाद भागवत श्रवण करते हैं, और फिर पूरा जीवन जो सीखा है, रूपा जी कह रहे हैं गृणंती गायंती या फिर गृणंती, जो सुन लिया, श्रवंती हो गया, गायंती हो गया, अब उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपनाते। सुना और किया कुछ नहीं तो क्या फायदा हुआ? सुना, समझा और किया नहीं तो फायदा नहीं। वहां पर लिखा एग्जिट, या वहां लिखा है पब्लिक कन्वीनियंस, ठीक है, आप गए नहीं वहां पर तो परेशान है, बाहर कुछ कर रहे हैं तो फायदा नहीं है ना। सुना नहीं इसका मतलब आपने, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, कुछ किया नहीं। तो जब इसको पढ़ते हैं तो हृदय में क्रांति आती है। तो भक्त जो है अपने आप समझ जाता है जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से संबंध क्या है, और मैं यहां कितनी देर का ड्रामा करने आया हूं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, उतने तक मुझे क्या करना है? अपने कृष्ण भावना को हवा देते रहना है, उतने समय तक मुझे इन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए जीवन में अपनाना है और प्रचार करके दूसरों को भी भक्ति में लगाना है, इतना समय करना है बस। और बाकी चीजें कौन ध्यान रखेगा? खाने पीने रहने की कपड़ों की भगवान रखेंगे, उनके प्रतिनिधि रखेंगे। अलग से कमाने जाना पड़ेगा क्या? नहीं। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल। और कई बार हमने देखा है डिवोटीज जो समझ जाते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है और कितने में जीवन चल सकता है, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग मालूम पड़ गया। लेकिन हमने देखा कई बार भक्त लोग जब गृहस्थ जीवन को भी अपनाते हैं तो बाहर जाने के बाद फिर वो ट्रेनिंग काम नहीं आता कई बार। किस रूप में? वो लोग भी कई बार हमने देखा मटेरियलिस्टिक व्यक्ति की तरह धन के पीछे भागते, इतना तो होना चाहिए, ऐसा घर तो होना चाहिए, इधर बंगला होना चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। क्यों क्यों डिजायर्स आ रही हैं? ऐसी इच्छाएं क्यों हो रही हैं? अचानक सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के बाद सिंपली लिविंग विदाउट थिंकिंग क्यों हो रहा है? भाई हमारे लक्ष्य क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम का लक्ष्य क्या है? यही है ना कि व्यक्ति जब आश्रम ज्वाइन करे तो आश्रम के सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए आत्म साक्षात करने का प्रयास करे, और फिर जब यह होता है या करने का प्रयास करता है, वेदों का अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो जीवन को उस प्रकार जिए ताकि वो रोल मॉडल बन सके समाज के लिए। अभी समाज में लोग सेंस एंजॉयमेंट के चक्कर में लगे या भोग के चक्कर में लगे, उसका कारण यह है कि सारे भोग कर रहे हैं, जब पता चलता है कि इंजीनियरिंग में 10 लाख का पैकेज मिनिमम है तो सारे इंजीनियरिंग करते हैं, जब पता चलता है इतने का है तो उतना करते हैं, जब पता चलता है आर्मी में ज्यादा मिल रहा है तो सारे आर्मी में लाइन लगा लेते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उससे पैसा मिलता है। पैसा किस लिए? ताकि भोग कर सके। तो समाज में भोग जो है उसने मुख्य धर्म का जगह ले ली। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो ऐसा आदर्श पेश करें समाज में कि उनको बोलना ना पड़े। गृणंती, अपने जीवन में अपनाएं उसको, ताकि समाज के लोग जब उसको देखेंगे तो धीरे धीरे बदलाव आएगा कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी, मैं इतना भोग करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हूं, इतना इकट्ठा करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हूं, प्रॉपर्टी का ठीक से बंटवारा करने के बाद भी ठीक नहीं हूं, इतने केसेस चल रहे हैं, इतने दुखी हूं, इतने शारीरिक प्रॉब्लम है तो भी मैं परेशान हूं। लेकिन भक्त लोग, ये लोग कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, हरि नाम लेते हैं, संतुष्ट रहते हैं, जितना मिल गया उतने में खुश हैं। तो फिर ये जो आदर्श वो देखते हैं तो वो उनको देखकर अपना जीवन भी बदलना चाहते कि ऐसा जीवन जीना है। तो जब कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाता है ना, तो उसको फिर जो वाइफ भी चाहिए उसको उसी सेम मेंटालिटी की चाहिए होती है। अगर आपने बाहरी आकर्षण की वजह से विवाह किया है तो गए, एक की ट्रेनिंग है एक की ट्रेनिंग नहीं है। कौन जीतेगा? जिसकी ट्रेनिंग नहीं है। तो भागना पड़ेगा और जबरदस्त विस्तार होगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सबको संतुष्ट करना पड़ेगा। और बच्चों को अगर स्कूल में डालो तो फीस कितनी है, और अगर आप अच्छे स्कूल में नहीं डालते हैं तो लोग परेशान हैं, देखो कहां डाला है, सरकारी स्कूल में डाल दिया, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, इधर से फोन आएगा उधर से फोन आएगा। तो व्यक्ति फिर उस चकाचौंध में उसको पूरा करने के लिए और मेहनत करता है। मैं कल बात कर रहा था परसों प्रभु जी से, कमलोचन प्रभु से, तो उन्होंने बड़ा सुंदर स्कूल यहां खोल दिया। कितनी फीस है प्रभु जी? 5 लाख। कोई फीस है? 2-3 हजार फीस है बस। आइए बच्चों को यहां लाइए, यहां पर बच्चे जो हैं सीखेंगे और साथ साथ डिग्री भी मिलेगी, भक्ति भी मिलेगी, बचपन से जीवन का लक्ष्य मालूम है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग फंडा दिमाग में है, तो ज्यादा मेहनत नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है और फिर इसके बाद भी गृहस्थ जीवन में जाता है तो क्रांति लानी चाहिए, क्रांति आनी चाहिए। हमने देखा कई बार भक्त लोग अच्छा ट्रेनिंग होने के बाद भी, गृहस्थ जीवन में जाने के बाद भी ठीक प्रकार से उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाते। तो वहां जाने का मतलब क्या है कि वहां पर भी एक आदर्श जीवन व्यतीत करें और संख्या बढ़ाएं भक्तों की, प्रचारक बने। भक्ति विनोद ठाकुर जी का नाम हमने इसलिए लिया था ताकि गृहस्थ हो तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसा, मतलब बनने का प्रयास करें। अगर उतना 100% नहीं भी कर पाए तो 60-70-30 कहीं तो आइए। ब्रह्मचारी बने तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जैसा, और वानप्रस्थ अगर कुछ बनना है तो श्रील प्रभुपाद जी जैसा, उसके बाद संन्यास लें। ये सारे आइडियल रोल मॉडल हमारे पास हैं। क्यों नहीं आएगी क्रांति? तीन लोगों ने इतनी बड़ी क्रांति ले आए और हमारी संख्या देखो, हर मंदिर में 20-50-100 लोग हैं, तो बहुत बड़ी क्रांति लाई जा सकती है समाज के अंदर। जो इस समय उथल पुथल है हमारे भक्त लोग कर सकते हैं। इसीलिए आज यहां 3 दिन का IIYC का प्रोग्राम रखा गया ताकि पूरे भारत में जहां पर भी यूथ प्रीचिंग हो रही है वहां के लीडर्स आए और यहां समझें और सीखें, उसके बाद फिर अपने एरिया में जाके उतने अच्छे ढंग से प्रचार करें। कल जैसे एक सेमिनार में बता रहे थे कि कंफर्ट जोन, भक्तों के लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं है। अगर कोई कंफर्ट जोन में रहना भी चाहता है तो उसकी माला बढ़ा दो ताकि बाद में नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की तरह ग्लोरीफाई किया जा सके। भैया देखो 64 नहीं 132 करता था, 128 करता था। ऐसा कोई कंफर्ट जोन नहीं चाहिए हमारे यहां। तो कोई व्यक्ति अगर भजन भी ज्यादा करेगा, मान लीजिए कंफर्ट जोन में सोकॉल्ड, तो वो भी माला ज्यादा करेगा, किताबें लिखेगा या प्रचार करेगा बैठकर। और जो ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ना चाहता करना चाहता उसके लिए बहुत सारी सेवाएं, सेवाओं की कमी नहीं है। तो इसलिए क्रांति की जरूरत है। और वो क्रांति कैसे आएगी? जब श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ को सिस्टमैटिकली अपने जीवन में पढ़ेंगे उतारेंगे। और इस ग्रंथ के बारे में तो कल भी बहुत कुछ बता दिया गया, इसलिए मैं आज उधर नहीं गया, क्योंकि सारे श्लोक सारे पीपीटीज हमको दिखाई गई और भागवतम की ग्लोरीज बताई गई कि क्या इसके अंदर किस प्रकार भगवान के हर अवतार का सुंदर चर्चा है, भक्तों के सुंदर जीवन चरित्र की चर्चा है, और समय काल परिस्थिति और योग्यता के अनुसार इतने सुंदर सुंदर टॉपिक है कि किसी को भी कहीं से भी देकर किसी को भी भक्त बनाया जा सकता है। तो क्यों ना इस ग्रंथ को अपना लाइफ एंड सोल बनाए, इस ग्रंथ को सुबह से लेकर शाम तक अध्ययन करें और उसके बाद इसका प्रचार करें, तब जाकर हम लोग बहुत आसानी से प्रभुपाद जी जो हमसे चाहते थे, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि आने वाले भक्त हमारे लिए क्या करें, कि किस प्रकार पूरे समाज में पूरे देश में पूरे विश्व में क्रांति आ जाए। और वो क्रांति तभी आएगी, वो क्रांति ऐसे नहीं आएगी कोई और लाएगा, वो क्रांति मुझसे आएगी। भगत सिंह पैदा होगा लेकिन मेरे घर से मेरे आश्रम से, तब जाके कुछ होगा। अन्यथा अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो माया तो कुछ ना कुछ कर ही रही है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, हम ढीले पड़ गए तो माया कर रही है। माया का मतलब यह हुआ कि कलयुग के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स घूम रहे हैं लेफ्ट एंड राइट में, अलग अलग संस्थाएं खोलकर वो पकड़ लेंगे, और जो कहीं ना इधर उधर दीक्षा ले लेगा वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा उसको समझाने के लिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि किसी ऑलरेडी कहीं किसी ने गलत जगह पर दीक्षा ले ली, आप उसको समझा नहीं सकते कि आपके गुरु गलत हैं, तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जो ऐसे खाली लोग घूम रहे हैं उनको जल्दी से पकड़ के प्रचार तो कर सकते हैं, अन्यथा क्या होगा, भारी संख्या में लोग गलत गलत गुरुओं की शरण में चले जाएंगे। ये तो भला हो कलयुग महाराज का कि एक एक गुरु को फॉलोअर भी करा रहे हैं ताकि उनके शिष्य जो है वो सोचना पे मजबूर हो जाएं कि अरे मैं इसके पास गया ये गिर गया, मैं इसके पास गया ये गिर गया, और इसके पास गया ये तो गिरा ही हुआ था, तो कहां जाऊं। तब उसको हमारे इस्कॉन के जो है ब्रह्मचारी दिखाई देते हैं, गृहस्थ भक्त दिखाई देते हैं, जो चलते फिरते भागवतम है, चलते फिरते भागवत बुक भागवतम है, जो जीवन में उतार रहे इन ग्रंथों को, उनका जीवन चरित्र देखते हैं। पहले वो आना नहीं चाहते इस्कॉन में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रचार हो गया ये मीट नहीं खाते, हाँ मीट नहीं खाते जीते कैसे, ये चाय कॉफी नहीं पीते, हाँ चाय कॉफी नहीं पीते तो जी कैसे रहे। कितनी अजीब बात लगती है लोगों को, लगता है ये एलियन है कहीं बाहर से ही आया है, चार नियम का पालन करता है। आप आज के समाज में बात कीजिए ना तो बड़ा अजीब लगता है। इसके रुकमणि किशोर में बता रहे थे कि बार अपने ऑफिस गए, ऑफिस में उन्होंने बॉस ने कहा सर आओ बैठो बातचीत करी, और फिर चाय ऑफर की, पहले कुछ खाने को क्या मना करते गए फिर चाय ऑफर की, चाय तो पी लो, चाय क्या पानी है तो गर्म पानी पी लो, तो वो भी मना कर दिया। तो सोच में पड़ गया वो, ऐसे देखने लगा मतलब जैसे सामने वाला व्यक्ति जो है जी नहीं रहा, मतलब वो तो कहते मतलब बिना चाय के जी रहे हो तो मतलब चाय पीते ही नहीं हो, मतलब चाय छोड़ दी मतलब आपने। तो बाहर के लोग पहले तो सेंस एंजॉयमेंट के चक्कर में लगे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है आप नियम बता दो शुरू शुरू में, इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं दूर ही रहे, हरे कृष्णा वाले अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जय हो हरि बोल प्रणाम, जय हो प्रभु जी, हरे कृष्णा राधे राधे, ऐसे ऐसे बोल के चले जाएंगे दूर दूर से। उनको मालूम है पास चले गए तो क्या कहेंगे कि जब करो बैठ के करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, तो भी नहीं करना चाहते, अरे भाई इधर मुश्किल है उस पे चलते हैं आसान वाले पे। वो क्या करता है, कहता है कोई मंत्र नहीं हो, तीन ही शब्द बोलता है, हरे कृष्णा राम तीन बोलो हो गया काम, बड़ा आसान है। या फिर दूसरी बात जाओ, वो कहता है ऐसा करो मन में जो आए वो करो, थोड़ा यहां करो थोड़ा वहां करो, पाप काम कुछ नहीं है, सब जीरो, अच्छी अच्छी फिलॉसफी देते हैं, तो उधर जाते हैं। फिर देखते जिस गुरु के प्रति आकर्षण था, जिस गुरु के पैर छूते थे, अब वो नहीं रहे या वो अब अंदर है बड़े घर में, तो परेशान रहते हैं वो, कहते ये चला गया चलो दूसरे गुरु के पास जाएं, ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते, ये तो कहते हैं समोसे के साथ क्या खाओ, कौन सी चटनी खाई है आपने, वो कहते हरी चटनी खाई है, कहते हरी नहीं खानी मीठी खा करा, मीठी चट तब तेरे पे कृपा आएगी। दूसरे को बोल तेरा प्रश्न पूछ क्या है, कहते तेरी कमीज में बटन कितने, कहते मैंने गिने नहीं, एक दो तीन छह बटन है, सात कमीज, सात बटन वाली कमीज पहन, कृपा आना शुरू होगी। कहले कमाल हो गया, महिलाएं भी परेशान हो रखी घर में, कहते हैं अपने मेरा जो टीवी चल रहा हो तो अपने बटवे को लाइए और मेरे टीवी पे दिखाइए, ऐसे करके कृपा आएगी, पैसा आएगा उसमें, और लोग भर भर मार्ग में ट्रक भर भर के जा रहे हैं लोग वहां पर। तो जब ऐसे लोग गिरते हैं, जब ऐसे लोग जेलों के अंदर दिखाई देते हैं, तब उनको लगता है यार, कहते ना सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, ये महंगा वाला सौदा तो लगता है इस्कॉन का, महंगा वाला मतलब थोड़ी नियम है थोड़ी तपस्या है लेकिन आनंद बड़ा है, एक बार आ गए, जुड़ गए, तो उसके बाद केवल हरी बोल हरी बोला, हाथ उठाने और नाचने। सुबह 4 बजे से नाचना शुरू करते हैं। और आप सोचिए, नाच सकता कौन है? कौन नाच सकता है? कभी सोचा है? कभी सोचा कोई दुखी व्यक्ति नाच रहा हो? कभी सोचा कि बिजनेस गिर गया हो, शेयर मार्केट डाउन हो गई, वो नाच रहा हो? नहीं नाचते ऐसे लोग। नाचता कौन है? जिसका मन प्रफुल्लित है। नाचता कौन है? जिसके पाप खत्म हो चुके हैं। नाचता कौन है? जो भक्तों के संग में उत्साहित है और आगे बढ़ना चाहता है, वो नाचता है। हल्का हो जाता है, हरि नाम लेते उसके सारे पाप का बोझ खत्म, कर्मों का बोझ खत्म। नाच सकता है वो। तो वो लोग जब हम लोगों को देखते हैं तो उनके लिए हम लोग रोल मॉडल है कि ठीक है, बार बार इधर उधर जाने से, माथा पटकने से कोई फायदा नहीं है। क्या करें? चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं। अच्छे लगते हैं ये लोग, बहुत अच्छे हैं, बात भी अच्छी करते हैं। चलो एक माला से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं। तो हमारे पास क्रांति करने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है। यही विदेश हो गया है, सारे पाश्चात्य देश ता रहे, पाश्चात्य वाली सारी संस्कृति यहां अपना रहे लोग। आपको यही दिख जाएंगे सारे लोग, स्त्रियां सिगरेट पीती हुई नजर आएंगी, छल्ले बनाती हुई नजर आएंगी, शराब पीती हुई नजर आएंगी, ये सब नजर आते हैं करते हुए। हम एयरपोर्ट से जा रहे थे, एक कमरा था उसमें धुआं धुआं हो रखा था, मैं पता नहीं क्यों हो रखा है। तो फिर किसी ने बाहर लिखा था स्मोकिंग जोन। ओह, मैंने कहा ये फॉग बना रहे अंदर। पी रहे हैं लड़कियां, लड़के सब पी रहे हैं। आए दिन आजकल वो उस पर चल रहा है एक मी टू, मेरे साथ भी हुआ है, सारी दुनिया बोलती है, हर जगह आ रहे और बड़े से बड़े शरीफ लोग पकड़े जा रहे हैं इसमें। आपको शायद ज्यादा पता नहीं होगा, आजकल एक वेबसाइट चल रही है मी टू। उसमें क्या है कि जो माताएं नहीं बोल सकते, जो बाहर की महिलाएं जिनको किसी ने सेक्सुअली हरास किया है, कुछ किया है, रेप किया है या टॉर्चर किया है, तो वो उस साइट पर जाकर लिखती है कि हाँ, मैं अपनी कहानी लिखती है कि हाँ मेरे साथ भी हुआ था और इसने किया था, और पुलिस जो है एफआईआर कर रही है उनके नाम पर। और आप हैरान हो जाओगे, ऐसे ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो हमारे समाज के रोल मॉडल है। ये तो बड़ा सज्जन पुरुष है, ये तो कभी कुछ बोल ही नहीं सकता किसी को, उसका नाम भी आ गया जो समाज के लिए रोल मॉडल है। ऐसे लोग मी टू वेबसाइट शुरू कर दिया, किसी ने कहा है इसको बंद कर दो इससे पहले कि सबका नाम आए। समाज का सबका नाम आ जाएगा, कुछ चाचा का नाम आ रहा, पिताजी का नाम आ रहा, दादा का नाम आ रहा, अरे सब अपने घर वालों के नाम, लोगों के नाम आ रहे हैं। मी टू, ही डिड विद मी दिस, माई गॉड। कैसे शांति आ सकती है? पर्दे के नीचे कैसे बचा सकते हो सबको? प्रभुपाद जी कह रहे हृदय में क्रांति लाओ। ये वो ग्रंथ है जो हृदय में क्रांति लाएगा, जो काम वासना से दूर कर देगा, क्रोध से दूर कर देगा, मन पर नियंत्रण हो जाएगा और व्यक्ति एक ऐसा आदर्श जीवन जिएगा आप सोच नहीं सकते। अब भक्तों के समाज में जब हम जीते हैं कितना अच्छा लगता है ना, भक्तों के समाज में। यहां पर क्या बोला जाता है? वैष्णव अपराध किसे कहते हैं? अगर किसी को मुस्कुरा के नहीं देखा तो वैष्णव अपराध है। अब व्यक्ति ऐसे रह नहीं सकता, अपराध है भी, क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भाई मुस्कुराना ही पड़ेगा। तो जहां पर मुस्कुराना और जहां पर हाथ या पैर लग जाने पर प्रणाम करते हैं लोग। एक भक्त बड़े मंदिर में ईस्ट ऑफ कैलाश में पहली बार आए तो उसको दूसरे भक्त का पैर लग गया, हल्का सा टच हो गया, उसने तुरंत उसको प्रणाम किया। सॉरी कदर कमाल है, इतना सेंसिटिव, यहां तो थप्पड़ मारने के बाद भी कोई हरे कृष्ण नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता बाहर, तो इसने हल्का सा लगा, ये प्रणाम कर रहे हैं। तो यहां पर इतने सेंसिटिव है लोग कि किसी को हाथ पैर लगने पर भी माफी मांगते हैं, ना मुस्कुरा कर देखो तो दिक्कत हो जाती है। बताया अगर मुस्कुरा कर नहीं देखा तो अपने एंसेस्टर्स के साथ नरकों में जाना पड़ता है। जितने आपने श्राद्ध नहीं किए, जितने को ऊपर नहीं भेजा, उनसे ज्यादा डबल नरकों में जाना पड़ता है अगर मुस्कुरा कर किसी को नहीं देखा। अब तो मुस्कुरा दो, तो मुस्कुराना पड़ता है। उसके बाद फिर 5 डिग्री आगे है, प्रणाम नहीं किया, निंदा कर दी और द्वेष रखा, मार दिया, कत्ल कर दिया, ये तो बहुत डिग्री, हाई डिग्री हो गई। तो जहां पर हाथ लगने पर या जहां पर मुस्कुराकर ना देखने पर अपराध माना जाता है तो वहां पर कत्ल या थप्पड़ मार सकता किसी को? तो कितना कंफर्टेबल जोन है यहां पर, आप कुछ भी कर लो कोई मारेगा नहीं, आपको मारेगा नहीं, घूर कर भी नहीं देखे क्या है, ऐसे भी नहीं कर सकता, जोर से भी नहीं बोल सकता, प्रभु जी आप ऐसे बोलोगे? नहीं नहीं प्रभु जी, रजोगुण में होना, रजोगुण में ना। बड़ा मुश्किल है। तो यहां तो तुरंत नीचे का भक्ति बता देगा कौन से गुण में चल रहे हो पूजी आजकल। और इतना नहीं, इतने सेंसिटिव कि आप अगर एक बार, मैंने अपने मंदिर के पास एक गाय को गोभी खिलाने की कोशिश करी, कुछ पत्ते, गाय ने नहीं खाए, मुझे लगा पता नहीं क्यों नहीं खाए, मैं थोड़ा सा और देता हूं। साथ में गार्ड खड़ा था और 5-6 लोग भी खड़े थे डिबूटीज, गार्ड क्या मालिक क्या कर रहे हो तुम यहां, क्या गिरा रहे, कूड़ा कर दिया समझो, जब देख रहे हो नहीं खा रहे तो फिर उसके मुंह में डाल रहे हो जबरदस्ती, पता नहीं कहां कहां से आए। वो कहते प्रभु जी प्रेसिडेंट है, मंदिर के प्रेसिडेंट है ये। अरे होंगे कहेंगे प्रेसिडेंट तो इधर तो कोई कुछ भी बोलते तो आप उसको बोल नहीं सकते, तेरे को निकाल दूं आज, ऐसे नहीं कर सकते। देखो कितना अहंकार है, कितना क्रोध है इनके अंदर, बंदा निकाल दिया अपने ईगो के चक्कर में, नहीं कर सकते। विनम्रता सिखा देते हैं लोग साथ वाले आपको, ऐसा एनवायरमेंट, इतना पीसफुल एनवायरमेंट, इतना आनंदमय एनवायरमेंट, कोई थोड़ी सी दिक्कत हो जाए तो 1-1.5 घंटा भक्तों को साथ लेके बैठ जाते, बताओ क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, नहीं करना चाहिए, यहां गलती है, तुरंत सॉल्व। तो इतना सुंदर वातावरण जहां पर कोई हिंसा नहीं, जहां पर कोई द्वेष नहीं, कहीं ईर्ष्या नहीं, तो ऐसा वातावरण कौन नहीं चाहेगा। गोलोक वैकुंठ था, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे हमारे मंदिर वैकुंठ है, कोई कुंठा नहीं है यहां पर, और जो कुंठा है, जिसको कुंठित है, वो वैकुंठ में नहीं है फिर, तो कौन नहीं आना चाहेगा ऐसे वातावरण में। बाहर के समाज में देखिए, लोगों के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर टीका करते हैं, टीका मतलब ऐसी टीका नहीं, मतलब मुंह से बोलते टीका, तुम ऐसे हो, तुम वो हो, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके फेस को लेकर, उनके फिजिक को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, उनके, तो समाज तो आपको टॉर्चर करने के लिए बैठा है बाहर, लेकिन भक्तों के समाज में आ जाओ, अगर कोई कुरूप है, कोई ज्यादा सुंदर नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा धन नहीं था उसके बाद, वो क्वालिटी बन जाती उसकी, इसको धन नहीं है, दो ही धोती कुर्ता है प्रभु जी, इसी को धोकर आता है, इसी को पहनता है, बड़ा हम्बल डिवोटी है, कमाल है, उसको लोग ग्लोरीफाई करते हैं। किसी को अगर आपने बोल दिया काला पीला नीला, कोई बोल ही नहीं सकते आप किसी को, किसी का मजाक उड़ा ही नहीं सकते, क्योंकि उड़ाया तो अपराध होगी, ठां दफा 302 लग गई, बोल ही नहीं सकते। अगर बोल दिया तो स्किन डिजीज है, किसको, उसको नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम उसको शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो इधर तो मतलब ऐसा वातावरण है, मतलब गोलोक वाला वातावरण है, ना बोल सकता व्यक्ति किसी को कुछ, बोल ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, मन से अपराध। तो ऐसा वातावरण पीसफुल वैकुंठ बना हुआ है, तो कौन नहीं आना चाहेगा। और जब हम देखते हैं समाज में दूसरे धर्म के लोग या दूसरी जाति के लोग या दूसरे तरह के लोग, जैसे ही भक्तों के जो चलते फिरते भागवत है, जो चलते फिरते भागवत पढ़ा है, सुना है, समझे, जीवन में उतार रहे हैं, ऐसे भक्तों के जैसे ही टच में आते हैं, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, भक्त लोग हैं तीर्थों को भी पवित्र करने वाले लोग हैं, जिनके निकट जाते ही पाप दूर हो जाते हैं, तो क्यों नहीं फील करेगा वो सरचार्ज अपने आप। और जैसे उनके नजदीक आते हैं भक्त, तो आसानी से वो समझ जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले संसार में पहले जो भक्त लोग होते, ब्राह्मण लोग होते थे, उनको देख के समझ जाते थे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, जो बोलते थे वही शास्त्र होता था। और आज तो हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, लेकिन फिर भी जो भक्त हैं वो कुछ भी बोलेंगे, ग्रंथ पढ़कर बोलेंगे, तो लोग उसको स्वीकार करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनके द्वारा जीवन जीते हैं। तो हमारा भक्त चलता फिरता क्रांतिकारी है, ना हाथ में तलवार है और ना दूसरे हाथ में पैसे हैं किसी को कन्वर्ट करने के लिए। हमारे पास एक हाथ में भगवत गीता है, दूसरे हाथ में भागवतम है, और जब हाथ थक जाए तो हाथ में चैंटिंग बैग आ जाता है, बोलो हरे कृष्ण ना, ये है बस। तो ये क्रांति है समाज में, तो इस क्रांति को करने के लिए हर व्यक्ति को तैयार होना चाहिए। हमारे यहां छोटा सा छोटा बच्चा भी क्रांतिकारी क्या करता है, हरे कृष्णा करता है। 60 साल का 70 साल का व्यक्ति जब अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने आता है, अच्छा मंदिर बनाया, बड़ा अच्छा लग रहा है, वहां पैसा अच्छा लगा, इसको पे बड़ा पैसा है, अचानक देखता छोटा सा बच्चा माला कर रहा है, फिर देखते नहीं उधर नहीं देखना, शर्म आती है उसको, यार ये इतना सा बच्चा माला कर रहा है, उसको बुला के इतना, तेरी उम्र कितनी है, 13 साल, अभी से माला कर रहा है, अंकल जी कौन से में करना चाहिए, बेटा बड़ा होके करते हैं, आप कर रहे हो, नहीं मैं नहीं कर रहा, तो फिर क्या फायदा, तुम्हारी उम्र में भी नहीं कर सकते, बड़ी बुरी हालत है। रिटायरमेंट के बाद भी लोग करवा चौथ खेल रहे होते पार्क में, मतलब ताश ताश खेल रहे होते हैं, टाइम नहीं है लोगों के पास, खाली बैठे हैं तो चेस खेल रहे हैं, दूसरा नहीं आया तो उधर जाएंगे, पहले वो चाल चलेंगे फिर इधर आके ये चाल चलेंगे। बड़ी अजीब वाली स्थिति है। तो हमारे यहां पर अगर कोई कुछ नहीं भी बोल रहा तो भी क्या है, वो प्रचारक है, क्योंकि उसको देख के लोग भक्ति कर रहे हैं। चरणामित बांटने वाला एक ब्रह्मचारी कुछ नहीं कर रहा, चरणामित बांट रहा है, वो कई गृहस्थों के लिए क्या है, इंस्पिरेशन, सब कुछ त्याग कर आया है, सेवा कर रहा है भगवान की। उस दिन मैं था यहां पर, मुझे पता चला यहां पर ऐसे ऐसे पुजारी भी हैं जिन्होंने सबको सर्वोच्च निछावर करके, हमारे मंदिरों में ऐसे गृहस्थ लोग हैं जो ऐसे रोल मॉडल, ब्रह्मचारी के लिए रोल मॉडल और गृहस्थों के लिए ब्रह्मचारी रोल मॉडल। तो ये समाज जब तैयार हो जाएगा, तैयार हो रहा है जैसे, तो अपने आप में क्रांति आएगी। और वो क्रांति लाने के लिए हमें कोई फिल्म क्रांति नहीं देखनी, हम लोगों को बस प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने हैं और इसको अपने जीवन में उतारना। हर एक के हृदय में क्रांति आएगी और जिसको जिसको छुएंगे उसके अंदर भी क्रांति आ जाएगी। बोलिए हरे कृष्णा। तो हो गया, तो अभी क्या है, प्रसादम 9:30 है, उससे बाद एक छोटा सा सेशन, बच्चों की बात करी तो कुछ बच्चे जो यहां तैयार हो रहे हैं उन बच्चों के द्वारा यहां पर एक परफॉर्मेंस है, श्लोक का परफॉर्मेंस, और हम सब लोगों के लिए, लीडर्स के लिए, आने वाले समय के लिए काफी अच्छा। इस ग्रेस कमलोचन पू ने यहां पर जो स्कूल शुरू किया है तो हम सबके लिए एक अच्छा सीखने के लिए है कि अपनी कम्युनिटी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसे बच्चे हमारे मंदिरों में भी आना शुरू हो जाएं और जुड़ना शुरू हो जाएं, और ये तभी होगा जब अच्छे पेरेंट्स होंगे, अच्छे पेरेंट्स तभी होंगे जब यहाँ पर भागवत होगी और लोग सुनने वाले होंगे। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपने क्रांति के विषय में सुना, प्रभु जी जो है आरएसएस बैकग्राउंड से है एकदम बिल्कुल बराबर सा श्लोक मिला उनको।